जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा गोपी जन बहलभ गिरिवर धारी, गोपी जन बहलभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा बनचारी, यमुना तीरा बनचारी, यमुना तीरा राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा बनचारी, यमुना तेरा बनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव राधा माधव राधे, जय राधा श्याम सुंदर। सुंदर जय राधा श्याम सुंदर जय राधा श्याम सुंदर जय राधा श्याम सुंदर जय राधा मदन मोहन जय राधा मदन मोहन जय राधा जय राधा गोविंद जय राधा गोविंद जय राधा गोविंद जय जय राधा गोपीनाथ जय राधा गोपीनाथ जय राधा राधा दामोदर जय राधा दामोदर जय राधा दामोदर जय राधा गौरानीताये 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 जय गौरानीता जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय जय प्रभु शिल प्रभुपाद की जय ग्रंथराज श्रीमद भागवत महाप्राण की जय समस्त वैष्णव भक्त वृंद की गौर प्रेम नंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। तो ग्रंथराज श्रीमद भागवत से पठन स्कंद 8 अध्याय 2 श्लोक संख्या 7-8 कौन सा श्लोक संख्या 7-8। तो 7 को एक बार बोलेंगे, 8 की 3 बार पुनरावृत्ति करेंगे। नानारण्य पशु ब्रात संकुलः द्रोण्यालङ्कृतः चित्रद्रुमसुरोध्यान कलकण्ठ विहङ्गमम् त्रिकूट पर्वत के नीचे की घाटियां अनेक प्रकार के जंगली जानवरों से सुशोभित हैं और देवताओं के उद्यान में जो वृक्ष हैं उन पर नाना प्रकार के पक्षी सुरीली तान से चहकते रहते हैं। आठवां, सरित सरोवी रक्षोदय सरित सरोभिरच्छोदय पुलिनै मणिबालुकै पुलिनै मणिबालुकै देवस्त्री मञ्जनामोदा देवस्त्री मञ्जनामोदा सौरभाम्बलनिलययुतः सौरभाम्बलनिलययुतः सरित सरोभिरच्छोदय पुलिनै मणिबालुकै देवस्त्री मञ्जनामोदा सौरभाम्बनिलययुतः सौरभाम्बनिलययुतः। आप लोग दोहराएंगे, सरिता शरो विरोच्छोदयी मड़े नई मण बालिकई मणिपाल कई उले नई मणिपाल कई देवस्त्री मञ्जनामोदा सौरभाम्बो निलययुतः। माताएं बोले, माइक बंद करके कॉर्डलेस बंद करके रखो। कॉर्डलेस है ना, कॉर्डलेस उसका स्विच ऑफ कर दो। स्विच ऑफ
करो।
शब्दार्थ, सरिता नदियों सरोवरी तथा झीलों से अच्छोदय निर्मल जल से पूर्ण पुलिनई किनारे थोड़ा इसका बोलो हरी मणि छोटे छोटे रत्नों से बालुकई बालू के कणों से मिलते जुलते देव स्त्री देवताओं की स्त्रियां मंजना जल में स्नान द्वारा आमोद, शारीरिक सुगंध, सौरभ अत्यंत सुगंधित, अंबु जल, अनिलय तथा वायु से युत, त्रिकूट पर्वत के वातावरण से समृद्ध। अनुवाद तात्पर्य अवेचनार भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद इस प्रकार है, त्रिकूट पर्वत में अनेक नदियां तथा झीलें हैं, जिनके तट बालू के कणों के सदृश छोटे छोटे रत्नों से ढके रहते हैं। उनका जल मणियों की भांति निर्मल है। जब देव ललनाएं उसमें स्नान करती हैं, तो जल तथा पवन उनके शरीरों से सुगंध ग्रहण कर लेते हैं, जिससे वायुमंडल और भी सुगंधित हो जाता है। तात्पर्य, इस भौतिक जगत में भी अनेक प्रकार के जीव हैं। पृथ्वी लोक के जीव सामान्यतः अपने शरीरों की दुर्गंध रोकने के लिए बाहर से सुगंधित पदार्थ लगाते हैं, किंतु जहां हम पाते हैं कि देवताओं की स्त्रियों की शारीरिक सुगंध से नदियां, झीलें, वायु तथा त्रिकूट पर्वत का सारा वातावरण भी सुगंधित हो उठता है। क्योंकि उच्च लोकों की स्त्रियों के शरीर अत्यंत सुंदर होते हैं, अतएव हम सहज ही कल्पना कर सकते हैं कि बैकुंठ की स्त्रियां या वृंदावन की गोपियों के शरीर कितने सुंदर होंगे। ओम ज्ञानम तिमिरांधस्य ज्ञानम जन शलाकया चक्षु उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदे अहम श्री गुरो श्रीयुत पद कमलं, श्री गुरु न वैष्णवांच श्री रूपं साग्र जातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं। श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांच। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रच्यारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। ए कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमो अस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदा ब्रशभान सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यस्य च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वर्षादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। मुखम करोति वाचालं पंगुलंगयति गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवं श्रीगुरुदीनतारिणं। भूतैरमहदिवी यः इमां पुरो विभो निरमायसि ते यदमुष पुरुष भुङ्क्ते गुणान् षोडशषोडशात्मकम् सोऽलंकर शिष्ट भगवान बचांसि मे। सोऽलंकर शिष्ट भगवान बचांसि मे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का इस प्रातःकालीन भागवत सत्र में हार्दिक स्वागत है और आप सभी के चरणों में प्रार्थना है। इस भागवत पर कुछ बोलने से पहले आप सभी का आशीर्वाद होगा तो कुछ हम बोल पाएंगे। हरे कृष्णा। तो यहां पर जो वर्णन चल रहा है त्रिकूट पर्वत का वर्णन चल रहा है, आप सभी उसके बारे में दो तीन दिन से सुन चुके हैं। अभी विशेष करके उसकी सुंदरता के बारे में सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि जो पर्वत है, पर्वत की जो घाटियां हैं, उसकी जो गुफाएं हैं, उसकी जो झीलें हैं, उसकी जो नदियां हैं, उसकी जो सौरभ है, वहां की जो स्त्रियां हैं, बहुत ही जो है सुंदर हैं, मन को मोहने वाली हैं। तो इस प्रकार ये हम समझ ही पा रहे हैं कि जो है ये उच्च लोकों का वर्णन है। और दूसरा हम देखते हैं यहां की जो सुंदरता है, उच्च लोकों की जो सुंदरता है सैकड़ों गुना बढ़ जाती है। जैसे जैसे हम ऊपर के लोकों में जाएंगे सुंदरता बढ़ती चली जाती है, तो सत्य लोक में जाएंगे तो और हजारों गुना बढ़ करके होगा। इसी प्रकार जो है नीचे के लोक हैं उनका भी जो है स्तर 100 गुना बढ़ता जाता है। तो इससे सिद्ध यही होता है कि जो मृत्यु लोक है, जो पृथ्वी लोक है जिसमें है, ये सबसे थर्ड क्लास का है। थर्ड क्लास का तो नहीं, क्योंकि जो चीज यहां है वो दूसरे लोकों में नहीं है, है? तो इसलिए जो है उच्च लोकों का जो ऐश्वर्य है उसके बारे में ये वर्णन चल रहा है। दूसरी बात ये भी सिद्ध हो रही है, जैसे प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में पीछे बताया था कि जो वैज्ञानिक लोग बोलते हैं कि उच्च लोकों में जीवन नहीं है, सारे के सारे खाली पड़े हैं, तो इससे मालूम चलता है कि भाई वो भी खाली कुछ कोई भी नहीं है, सब भरे हैं, वहां भी बुकिंग चालू है। तो इसलिए कुछ भी खाली नहीं है संसार में, सब पैक है। और तीसरी बात यहां से ये भी सिद्ध हो रहा है, सब कुछ तो अच्छा है, वहां का वातावरण अच्छा है, वहां के लोग अच्छे हैं, वहां की जो है सभ्यता अच्छी होगी, लेकिन कहीं भी इतने उसमें चर्चा में कहीं भी ये वर्णन नहीं आया कि वहां भक्त भी रहते हैं, सत्संग भी चलता है, कीर्तन भी चलता है। ये विशेष बात है, इसको हम देखते हैं। नाना अरण्य पशु ब्रात संकुल द्रोण अलंकृत चित्र द्रुमा सुरोध्यान कलकंठ विहंगम। नाना अरण्य पशु ब्रात संकुल द्रोणी अलंकृत। तो बोल रहे हैं कि वहां के जो जंगल है, जंगलों में क्या है, नाना अरण्य और पशु ब्रात। तो इससे ये मालूम चलता है कि एक जंगल नहीं है, नाना शब्द आगे दिया है, तो इससे सब में ये लगेगा, मतलब कई जंगल हैं एक के बाद एक, और उन जंगलों में जो है जंगली जानवर भी बहुत सारे हैं। ब्रात, ब्रात का मतलब होता है झुंड के झुंड। संकुल, तो संकुल का मतलब होता है पैक, भरे पड़े हैं जंगलों में पशु पक्षी कीट पतंग सब खूब बहुत सारे हैं। और क्या है, चित्र द्रुम सुरोध्यान, तो अलंकृत, अच्छा द्रोणी पूर्ण, दूसरा जो है बोल रहे हैं द्रोण अलंकृत चित्र द्रुम सुरोध्यान। तो बोलते हैं कि वहां की जो घाटियां हैं वो कैसी हैं, अलंकृत हैं। अलंकृत का मतलब होता है खूब सजी धजी हैं। हमारे यहां कहीं जाते हैं किसी इस स्थान पे कुछ अच्छा भी होता है तो पहले वहां कुछ पहले साफ साफ करना, झाड़ू पोछा करना होता है, कुछ बिछा करके फिर बैठ सकते हैं। लेकिन यहाँ बिल्कुल पहले से ही कैसी है, साफ चमचमाती है, अलंकृत है। अलंकृत का मतलब होता है देखने में खूब सुंदर है। तो घाटियां बहुत सुंदर ढंग से सजाई गई हैं, चित्र जिसमें अनेक प्रकार की चित्रकारी है, और दुरम सुर उद्यान कलकंठ विहंगमम। और जो वहां के जो सुर उद्यान है, देवताओं के जो बागान है, बगीचे हैं, उनके जो घूमने के स्थान है, उन पे क्या है, द्रुम अनेक प्रकार के पेड़ पौधे हैं, मतलब पूरा हरा भरा है। और जिसमें क्या है, कलकंठ विहंगम, अनेक प्रकार के जो पक्षी हैं, वो चाँ 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 चू 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 चू, मतलब अनेक अनेक प्रकार की आवाज कर रहे हैं। तो ये तो जो है वृंदावन में भी देखने के लिए मिलता था। एक समय ऐसा था यहाँ वृंदावन में इतनी आवाजें होती थी पक्षियों की, अनेक प्रकार के जो है मोर कूक रहे हैं, पक्षियां, तोते, कितना कितना सारी आवाज हुआ करते थे। कूजत कोकिल हंस सारस गण, कीड़े मयूरा कुले, नाना रत्न निबंध मूल बिटप, श्रीयुक्त वृंदावने। तो श्री युक्त वृंदावन, ये ऐश्वर्य से वृंदावन भी भरा पड़ा हुआ था। तो यहां भी जो है इसी प्रकार का वर्णन चल रहा है कि जो घाटी है, उस घाटी के जो है जो जंगल है वो भी बहुत अच्छे हैं, जिसमें अनेक प्रकार के पशु पक्षी हैं, और दूसरी वहां की जो क्या नाम है उद्यान है, उद्यान में अनेक प्रकार के वृक्ष हैं, लता हैं, जिन पर अनेक प्रकार के पक्षी चहचहा रहे हैं। इसके बाद बोलते हैं, सरित सौर भी अच्छोदय पुल नई मणु बालिक, देव स्त्री मत जनामोद सौरभ अम्बु निलयुत। सरित सरोविर अच्छोदय, तो जो नदियां हैं, जो झील हैं, सरित नदियां, सरोवी झील है, वो कैसी हैं, अच्छोदय। अच्छोदय का मतलब होता है निर्मल जल से भरी हुई है, पूरा एकदम पैक पैक चल रही है, हिलोरे लेते हुए चल रही है, और जल भी इतना सुंदर है, इतना निर्मल है। तो उसकी उपमा दी है पुलिनई मणु मणि बालुकई। तो वो जो जल है मणि के समान, मतलब शुद्ध है, एकदम पारदर्शी है, आप नीचे कुछ भी देख सकते हैं उसमें। बहुत सी जगह देखा जाता है कि ऐसी पानी होता है, विदेशों की नदियां प्राय वो इस प्रकार को देखने की मिलती है। तो जैसे एक देखा जाता है, तो यहाँ की नदियां थोड़ा गंदी हैं, बहुत सारी गंदी कर दी गई हैं, कुछ तो बेचारी ठीक थी लेकिन बाद में उनको कर दिया गया। तो यहाँ पर जो है उनकी विशेषता क्या है कि जो जल है उन नदियों में, झीलों में, वो कैसा है, बिल्कुल चमचमाता, मतलब पारदर्शी है और निर्मल है। और पुलिनई मणि बालुकई, पुलिनई बोलते हैं उनके किनारे, किनारे की जो है जो बालू होती है, वास्तव में वो बालू नहीं है, वो क्या है, रत्नों के छोटे छोटे टुकड़े ही बालू के सदृश हैं वहां पर। बहुत से तो सोच रहे हैं वो वहीं चलना चाहिए फिर, यहाँ तो रत्न देखने के लिए भी नहीं मिलते हैं। लेकिन करोगे क्या, जो वहां है तो उनको पूछना चाहिए, उनका मनोभाव जानना चाहिए, वो उसको कैसा फीलिंग कर रहे हैं। वो सोचते हैं कि हम मृत्यु लोक में आ जाएं, और हम सोचते हैं हम उच्च लोकों में चले जाएं, तो वास्तव में वहां जाकर के कुछ मिलेगा नहीं, समय ही बर्बाद होगा। तो उसके बाद में आगे और क्या बोले हैं, देव स्त्री मद जनामोद। तो देव स्त्रियां, जो देवताओं की जो पत्नियां हैं, मंजन आमोद सौरभ अम्ब अनिलयुत। तो जब उन झीलों में उन नदियों में वो स्नान करती हैं, तो उनके शरीर से निकलने वाली जो सौरभ है, जो सुगंधी है, तो उसमें क्या होता है, अनिलई जो वायु बह रही है वो क्या करती है, उस सौरभ को लेकर के पूरे वातावरण को कैसा कर देती है, वो सुगंधित बना देती है, बहुत मतलब सुंदर उसको बना देती है, मोहक बना देती है, खुशबूदार बना देती है। तो प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में लिख रहे हैं, इस भौतिक जगत में भी अनेक प्रकार के जीव हैं। पृथ्वी लोक के जीव सामान्यतया अपने शरीरों की दुर्गंध रोकने के लिए बाहर से सुगंधित पदार्थ लगाते हैं। तो इस भौतिक जगत की जो है एक खासियत है, यहां जो है हर चीज क्या है, कलुषित है। यहां हर चीज कैसी हो गई है, कलुषित हो गई। जैसे जैसे ऊपर में जाएंगे हर चीज में प्योरिटी शुद्धता बढ़ती जाती है, सतोगुण बढ़ता जाता है। यहां रजोगुण तमोगुण की प्रधानता ज्यादा हो गई है। हर चीज यहां कैसी है, पलूटेड है, मतलब इसमें जो है रजोगुण तमोगुण की प्रधानता अधिक हो जाने से सब चीज कैसी है, दूषित हो चुकी है हर चीज। लेकिन ऊपर के लोकों में ऐसा नहीं है। ऊपर के लोकों में धीरे धीरे हम बढ़ेंगे ऊपर, तो फिर सतोगुण की प्रधानता बढ़ती है, और एकदम बढ़ते 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 थोड़ा मिक्स सब जगह है। आप ब्रह्म भुवनात लोग पृथ्वी लोक से सत्य लोक तक जाएंगे, हालांकि सत्य लोक आदि में महाजन तप सत्य, क्योंकि वहां बड़े बड़े ऋषि योगी लोग रहते हैं, लेकिन वहां भी जो है मिक्स रहता है रजोगुण तमोगुण, तो सब जगह मिश्र है पूरे ब्रह्मांड में। तो अभी ये बात इसमें जो है विशेष करके देखने के लिए मिलती है कि यहां पर जो है, हालांकि ये स्थान बहुत सुंदर है, खूब अट्रैक्ट है, और देखा जाए तो भक्ति के बहुत अनुकूल भी है, है कि नहीं? लेकिन चूंकि वहां का जो माहौल है उसको इतना दूषित बना दिया गया है, मतलब एक पिकनिक स्पॉट बना दिया गया है। जैसे हम लोग पहले हिमालय में बहुत से लोग जो है तपस्या कर करके वो सब भगवत धाम गए हैं, लेकिन आज हिमालय की जो स्थिति है, आप देखो शिमला तक चले जाओ, शिमला से ऊपर चले जाओ, कहीं भी कोई स्थान ऐसा नहीं जहां लोग शराब नहीं पी रहे हो, मांसाहार नहीं कर रहे हो, सब प्रकार से दूषित करके रख दिया है। सूत गोस्वामी बोलते हैं जो है कि जो तीर्थ है, हालांकि तीर्थों की जो है एक अपनी विशेषता है, लेकिन अति भूर उग्र कर्माणी नास्तिक रौरवा जना, अति उग्र भूर कर्माणी नास्तिक रौरव जना ते अपि तिष्ठन्ते तीर्थेषु तीर्थ सार ततोगतः। जो तीर्थों का जो सार है, तीर्थ में पहुंचते ही एक अनेक उस तीर्थ का एक प्रभाव होता है, उस माहौल में पहुंचते ही शरीर के विचार अपने आप बदल जाते हैं। देशे काले च पात्र, एक स्थान होता है जिसमें पहुंचने से विचार मतलब अलग हो जाते हैं। तो ऐसे ही तीर्थ भी जो है, इनकी पोटेंसी तो है, लेकिन पोटेंसी अब काम क्यों नहीं कर रही है, इसलिए काम नहीं कर रही है क्योंकि उन तीर्थों में भी ऐसे दूषित लोग वहां जो है पहुंच चुके हैं। अति उग्र भूर कर्माणो, मतलब अति उग्र, उग्र शब्द भी एक अपने आप में बहुत था किसी चीज को बड़ा दिखाने के लिए, लेकिन वहां पर जो है वर्णन किया जा रहा है अति उग्र। अति उग्र का मतलब होता है तीर्थों में वो कार्य हो रहे हैं जो दूसरे देश मतलब अन्य दूसरे स्थानों में भी देखने के लिए नहीं मिलेंगे, ठीक है ना? तो अति उग्र भूर कर्माणो, इन अति उग्र कर्मों के द्वारा मतलब पापों के द्वारा क्या होता है, ऐसे लोग जो है जो पापी किस्म के व्यक्ति हैं, जो उन तीर्थों में आकर के बसने से फिर उसका क्या हुआ है, तीर्थ सार ततोगतः। जो खाने पीने वाले हैं, चोरी डकैती करने वाले हैं, सब कुछ करने वाले हैं, वो भी क्या कर रहे हैं, तीर्थों में भर गए हैं। वो जानते हैं सारे लोग तो यहां आते हैं, बड़े बड़े पैसे वाले तो तीर्थों में आते हैं, गांव में रह करके क्या करेंगे भाई, कुछ कर, बिजनेस नहीं कुछ नहीं तो बेचारा करेगा क्या है। तो बोलते हैं भाई कहीं तो बिजनेस कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो बोलते हैं तीर्थों में जो है लोग खूब लाते हैं जेब भर भर करके, तो इसलिए वो लोग उसका फायदा लेने के लिए यहाँ आ जाते हैं। एक बार जो है रथ यात्रा थी वृंदावन में, तो हम जो है उनको अनाउंस कर रहे थे, हम रथ पे बैठे थे, अनाउंस कर रहे थे कि भाई सब अपने अपने मोबाइलों को आप संभाल करके रखो है, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे मोबाइल चोरने वाले आ गए हैं। बाद में मैंने देखा तो मेरा ही मोबाइल नहीं है। ज्यादा समय नहीं लगा, ज्यादा समय नहीं लगा, आश्चर्य वाली बात हो गई भाई है, इतना फटाफट जो है आप सोच सकते हैं कितना उस्ताजी से काम करते हो। शर्म से फिर मैंने दोबारा कुछ कहा ही नहीं, भाई जो भी है जाने दो। मैं तो इससे लगता है, तो इसलिए संसार में दो प्रकार के व्यक्ति हैं, कौन कौन से, एक काक स्वभाव, दूसरा हंस स्वभाव। काक स्वभाव का मतलब होता है कौवा जैसे लोग रहते हैं। कौवे कहां बैठते हैं, कूड़े करकट पर बैठते हैं, गंदे स्थानों पर बैठते हैं, ठीक है ना। और उनकी वाणी जो कौवा बोलता है कोई सुनने के लिए, कितना अच्छा बोल रहा है कौवा, तो है कभी ऐसा लगता है आप लोगों को, कभी नहीं लगता। तो कौवा का बैठना जो है गंदा स्थान है, उसकी बोली भी जो है कोई लायक नहीं करता, और उसका खाद्य भी गंदा ही है। कभी कौवा जो फल फ्रूट नहीं खाता बागानों में जाकर के, गांवों के इधर गुरदेही जो है कूड़े करकट पर कांव 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 को सब मड़राते रहते हैं। तो इसलिए आज भी जो है ऐसे बहुत से स्थान हैं, हालांकि बहुत तीर्थ है, लेकिन आजकल उन स्थानों को भी जो है ऐसे स्थान कुओं के जैसे रहने का स्थान बना दिया। ज्यादातर रजोगुणी तमोगुणी जो लोग हैं ऐसे स्थानों पर कौन जाते हैं, भोग विलासी लोग जाते हैं। यहां कौन आ रहा है, देव स्त्री यहां, तो इसका मतलब देव स्त्री आ रही हैं, तो देवता तो आएंगे ही आएंगे वहां पर जो है, कोई थोड़ी कोई स्त्रियों का मेला अलग, तो कोई पुरुष का यहां प्रवेश नहीं है, है कि नहीं। और फिर उसी स्थान पे जा रहे हैं कोई, चलो भाई इसलिए तो नहीं जा रहे कि चलो कुछ शास्त्र का अध्ययन करेंगे, कुछ जप कर लेंगे, एकांत अच्छा स्थान है। सब किसके लिए जा रहे हैं, मौज मस्ती के लिए जा रहे हैं, खाओ पियो मौज करो, है कि नहीं। तत बाक विसर्गो जनताग विप्लई विप्लवई, क्या है, तत बाक विसर्गो सॉरी न यतवत चित्र पदम हरेर यसो जगत पवित्रम प्रगणित कहर्चित तत्वायसम तीर्थ उसनंति मानसा न यत्र हंसा निर्मक्ति उसक्षया न यतवत चित्र पदम हरेर यसो जगत पवित्रम प्रगणित कहर्चित। तो जहां कोए लोग बैठते हैं, अर्थात जहां संसारी व्यक्ति जो है, जहां जो है क्या करते हैं, खाने पीने में जो मौज मस्ती ले रहे हैं, पिकनिक मनाने में मौज मस्ती ले रहे हैं, न यत्र हंसा निर्मति, जो हंस स्वभाव के जो लोग हैं, जो परमहंस है, जो भक्त है, कभी भी ऐसे स्थानों पर भ्रमण नहीं करते हैं। क्योंकि बोलते तत बायसम तीर्थम उसनंति मानसा, वास्तव में वो स्थान कैसे हो गए हैं, कुओं के रहने के स्थान जैसे, जहां कुए जो है कांव 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 करते रहे, ऐसे स्थान हो गए। तो जो संसारी है भोग भोगे ऐश्वर्य पर सकता नाम, जो जो भोग ऐश्वर्य में जो लगा हुआ है, खाने पीने में जो लगा है, मौज मस्ती में जो लगा हुआ है, ऐसे स्थान कैसे हैं, कुओं के रहने के जैसे स्थान। तो हालांकि इतना सुंदर अच्छा वर्णन चल रहा है न यत्र हंसा, लेकिन कहीं भी हमने इसने वर्णन में नहीं देखा कि वहां साधु महात्मा भी जाते हैं और वहां पर रहते हैं, न यत्र हंसा, निर्मति उसक है, तो वहां पर जो है हंसगण अर्थात जो भक्त हैं, जो साधु हैं, जो हंस प्रकृति के लोग हैं, वो दूषित वातावरण में कभी नहीं जाते। वो तो क्या करते हैं, प्रकृति का जो नेचुरल जो सौंदर्य है उसका वो लोग आनंद लेते हैं। इसलिए हंस जो है कभी भी गंदे स्थान में नहीं बैठता। वो तो जो है बड़ी बड़ी झीलों में जहां अनेक प्रकार के कमल खिले रहते हैं, खुशबू जो है वितरित होती है, ऐसे स्थानों में वो जो है आनंद लेते हैं, दूसरे स्थानों में वो लोग आनंद नहीं लेते हैं। तो इसलिए शिक्षा क्या मिल रही है, शिक्षा ये मिल रही है क्योंकि हालांकि इतने सुंदर सुंदर स्थान है, और लोग भी जो है सब हाई क्वालिटी के लोग जा रहे हैं, सब पढ़े लिखे जा रहे हैं, सब पैसे वाले जा रहे हैं, लेकिन कोई भी अच्छी मानसिकता से नहीं जा रहा है, कोई भी इस मानसिकता से नहीं जा रहा है कि चलो भाई हम कुल्लू जा रहे हैं, मनाली जा रहे हैं, शिमला जा रहे हैं, जा करके थोड़ा सा साधना भजन करेंगे, कुछ तपस्या करेंगे। साब की चेतना कैसी है, साब की चेतना दूषित है, चलो थोड़ा पिकनिक मना के आ जाएंगे, कुछ खा पी के। इसलिए तो बर्बादी चल रही है। जहां सबसे सुरक्षित स्थान था हिमालय, आज सबसे ज्यादा क्या हो चुका है, सबसे ज्यादा खतरनाक हो चुका है। कब कौन सा पहाड़ जो है गिरेगा, कब क्या होगा, कुछ नहीं कह रहे। कब बादल फटेगा, आप देख रहे ना कितना, नहीं तो कितना मतलब सुरक्षित स्थान था। ऐसे लगता था कि सब जगह नष्ट हो जाएगा, लेकिन फिर भी ये क्षेत्र बने रहेंगे। लेकिन आज देखते हैं उसको सुन करके ही धड़कने बढ़ जाती है, अरे भाई वहां आप नहीं जाएंगे। ये सब किसके कारण, ये सब पापों के कारण हो रहा है। ये सब आज तीर्थों की जो पवित्रता है, दूषित लोगों ने, काक स्वभाव के लोगों ने क्या कर दिया है, बिल्कुल उसको जो है दूषित कर दिया। तो इसलिए नत यत्र हंसा निर्मति है, ऐसे स्थानों में जो भक्तगण है वो रमण नहीं करते हैं। लेकिन जहां भक्त नहीं रहेंगे, जहां भक्त रहेंगे तो कृष्ण कथा रहेगी, भगवत चर्चा रहेगी, भगवत नाम रहेगा, यही सारे संसार का मंगल करेगा। जहां जिस स्थान में भक्त नहीं है, तो क्या होगा, तत बाक विसर्गो जनताग विप्लय यस्मिन प्रतिश्लोकम अवध्य बत्यपि नामानि अनंतस्य यशो अंकितानि यत् श्रवन्ति गायन्ति गृणन्ति साधव। क्योंकि भक्त जहां होते हैं, नामानि अनंतस्य यशो अंकितानि यत् श्रवन्ति गृणन्ति श्रवन्ति गायन्ति गृणन्ति साधव, तो जहां भक्त होंगे वहीं तो भगवान की चर्चा रहेगी, और ये भगवत चर्चा ही सारे संसार का कल्याण करेगी। इसलिए तो गोपियों ने कहा जो संसार के सबसे टॉप मोस्ट की भक्त हैं, तब कथा अमृतम तप्त जीवनम, जो जीवन से दग्ध हो रहे हैं, अनेक प्रकार की समस्याओं से गुजर रहे हैं, नाना प्रकार की जो है टेंशनों से गुजर रहे हैं, उनका कल्याण केवल भगवत चर्चा ही कर सकती है। तत बाक विसर्गो जनता अघ विप्लय, जनता अघ विप्लव, जनता के संसार के पापी व्यक्ति के भी पापों को भगवत कथा के द्वारा, भगवत चर्चा के द्वारा, भगवत नाम के द्वारा जो है समन किया जा सकता है, और संसार में कोई दूसरा उपाय है नहीं। तो इसलिए आज संसार में जो है लोग इस मानसिकता से कोई नहीं जाते कि चलो भाई बहुत घर गृहस्थी में रहते रहते बहुत कुछ हमने गलत सलत किया है, तो चलो कम से कम कुछ दिन तो जो है थोड़ा साधना भजन करेंगे हम जा करके, है कि नहीं। आजकल तो जो है क्या नाम है, तीर्थों को भी जो है वहां भी वो जो है मौज मस्ती के लिए जाते हैं। तो इसलिए तत बाक विसर्ग जनता विप्लव है, जनता में विप्लव वो ही कर सकता है, जनता को जो है शुद्ध वो ही कर सकता है जहां भगवत चर्चा हो रही है, जहां लोग भगवत कथा भगवत कीर्तन सुनने के लिए जाते हैं। शास्त्रों के अंदर उदाहरण भरे पड़े हैं, जो भी भगवत धाम गए हैं केवल भगवत भजन करके गए हैं, कोई पिकनिक मना करके कौए की तरह जो है कुछ भी कचड़ा मचड़ा खा पी करके कोई भी भगवत धाम नहीं गया। आजकल देख रहे हैं लोग कुछ भी खा रहे हैं, सड़ा गला जो भी मिल जाता है बस सबको खा जाती है। कोई नहीं पूछ रहा भाई के भाई कितने दिन का है ये सब, कब बनाया है आपने, आप बस सालों सालों रखे रहो, बस वो सड़न मतलब बदबू ना आए उसमें से, बाकी सब जल जाएगा, बस पेट में जाकर के बेशक वो बदबू देने लग जाए कोई बात नहीं है। तो इसलिए क्या नाम है, नारद जी जो है देख सकते कि जो है कथा ही पापी से पापी व्यक्ति का और उत्तम से उच्चतम से उच्चतम कोटि का जो है भगवत कथा ही परम मंगल कर सकती है। तो इसलिए जैसे नारद जी थे, नारद जी दासी पुत्र थे, लेकिन भगवत कथा का श्रवण करके आज जो है क्या ना ब्रह्मपुत्र बने हैं, है कि नहीं। आज वो स्थिति है उनकी कि भगवान के धाम में भी ऐसे जाते हैं जैसे अपने कोई पर्सनल रूम में जाता है, अपने घर में जाता है, कोई पूछ करके नहीं जाते, जब भी जाना है पहुंच जाते हैं। वो यहाँ अर्जी लगा लगा करके मर जाते हैं, लेकिन अर्जी की सुनवाई नहीं होती है, है? होता है कि नहीं होता है, ये भगवत कथा का ही प्रभाव है भाई। तो इसलिए अनेक शास्त्रों में उदाहरण, दस्युरथ नाकर वो तो कौवे के जैसे ही जो है कांकवां कर रहा था ना, लेकिन आज देखो नारद जी के संपर्क में आकर के एक ही मंत्र दे दिया, ठीक है क्या बोलोगे, बोला मैंने तो मारे हैं, ठीक है मारे हैं, तू मरा बोल, नो प्रॉब्लम। वो मरा मरा से आज में वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना, जिन्होंने जो है वाल्मीकि रामायण लिखी है, जिसे भगवान श्री राम ने अपने पूरे परिवार के साथ उस रामायण को सुना, वाल्मीकि रामायण को ब्रह्मा जी ने उसको पढ़ा, ये सब कथा का प्रभाव है, सत्संग का प्रभाव है, भगवत नाम का प्रभाव है। सबरी जो है भागी यहां से और मतंग ऋषि की शरण में गई, वहां उन्होंने उनसे शरण ली, उनका आशीर्वाद हुआ है, और वो ही सबरी जो है जहां बड़े बड़े ऋषि मुनि ध्यानस्थ होकर के जिनका भजन कर रहे थे, लेकिन सबरी केवल जो है भगवत सेवा गुरु जी के आदेश के अनुसार वो काम कर रही थी, और वो ही भगवान श्री राम सबरी की कुटिया का पता पूछ रहे हैं। ऋषि मुनि जो है वो पूछ रहे, हो सकता है कि हमारे बारे में पूछ रहे होंगे प्रभु लेकिन आश्चर्य होता नहीं है वो सबरी के बारे में, और जिस सबरी को सब ने जो है उस एरिया के जितने भी कुटिया वाले थे सब ने बिल्कुल तिरस्कृत करके रखा था, बेचारी बाहर भी नहीं निकलती थी डर से, सब घृणा की दृष्टि से देखते थे, और उन्हीं लोगों से भगवान श्री राम जी पूछ रहे हैं कि भाई वो सबरी का कुटिया किधर है, अरे हम लोग तो इतने दिन से बड़े जो है एक कर रहे थे, भजन कर रहे थे, हमें नहीं पूछ रहे। तो इसलिए सबरी ने अपने गुरु के निर्देश के अनुसार अच्छी तरह से उनके वाक्यों में विश्वास करके डटी रही समर में, हालांकि विपत्तियों के पहाड़ टूटे उसके ऊपर, लेकिन फिर भी वो डटी रहे। तो कहने का आशय यह है कि भाई हालांकि यहां पर बहुत सुंदर अनेक अनेक लोकों का वर्णन चल रहा है, लेकिन वो लोकों में भी उन स्थानों में भी कितने भी सुंदर क्यों ना स्थान हो, यदि भगवत चर्चा का गायन नहीं हो रहा है, जहां साधु लोग संत लोग जहां विचरण नहीं कर रहे हैं, वो सब क्या कैसा है, तत्वायसम वो कौओं के रहने का स्थान है, भक्तों का जो स्थान है वास्तव में वो हंसों का स्थान है। एक बार शिव जी जा रहे थे पार्वती के साथ में आकाश मार्ग से नंदी पर सवार होकर के, अचानक उनका नंदी जो है भगवान शिव ने क्या किया, उसको लैंडिंग किया, नंदी लैंडिंग हुआ, शिव जी उतरे और उतर करके जो है उन्होंने क्या किया, दंडवत प्रणाम किया। तो जब दंडवत प्रणाम किया तो पार्वती चारों तरफ देखे, यहां तो कोई नहीं है, किसको प्रणाम कर रहे हैं भला ये, तब प्रणाम करके जब आए तो उन्होंने पूछा, प्रभु आपने किसको प्रणाम किया, तो उन्होंने कहा कि देखो वो खंडर दिखाई दे रहा है ना, वो टापू सा, बोला हाँ वो तो खंडर है, खंडर है, लेकिन 10,000 वर्ष पहले वहां एक भगवान के भक्त थे, आज मैं जो है ये भूमि उनके चरणों से चिन्हित तो हुई है, इस भूमि पर उन भक्त के महान भक्त के चरण पड़े हैं, आज उसको मैं दंडवत प्रणाम कर रहा हूं। अब सोचो शिव जी अपने आप में कितने महान है, लेकिन वो भी जो है भक्तों का कितना सम्मान करते हैं। तो इसलिए स्थान कितने भी शुद्ध क्यों न हो, लेकिन जहां भगवत भक्त नहीं है, तत्वायसम न यत्र हंसा निर्मति, वो तो कौओं के कांव 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 है बास, उसके लिए संत वहां बास नहीं करते हैं। दूसरी बात यहां पर यह दी गई है कि जो है वहां की जो स्त्रियां हैं बहुत सुंदर हैं, उनके जो है शरीर से सौरभ निकलती रहती है, लेकिन प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वास्तव में अच्छी बात है स्त्रियों की सुंदर सुंदर होती हैं, लेकिन अतएव हम सहजी कल्पना कर सकते कि बैकुंठ की स्त्रियां या वृंदावन की गोपियों के शरीर से कितने सुंदर नहीं होंगे। तो स्वर्ग की जो स्त्रियां वास्तव में ही सुंदर है, लेकिन जितना हम सोच रहे हैं उतना हमें मतलब ज्यादा उनको जितना हम सोच रहे हैं ऐसा नहीं है। आप सोच सकते हैं कि आप देखो जैसे जैसे हम जो है ऊपर के लोकों में जाएंगे, जैसे बैकुंठ की स्त्रियां हैं, वास्तव में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि उनकी सुंदरता यहां की सुंदरता तो मतलब सोच उस हम कभी सोच भी नहीं सकते कितनी वो सुंदर हो सकती है। एक छोटा सा हम दृष्टांत देख सकते हैं, जब जो है देवता और असुर मंथन कर रहे थे किसके लिए, अमृत के लिए, तो मंथन करते करते जो है कई सारी चीजें उसमें से निकली है, और कुछ जो है फिर बाद में थोड़ा सा क्या हुआ जो है लक्ष्मी निकली। तो जैसे ही लक्ष्मी निकली तो वो सारे देवता जो लक्ष्य को लेकर के अमृत के लिए मंथन कर रहे थे, लेकिन लक्ष्मी को देख करके उन्होंने उसका मंथन करना ही छोड़ दिया। अरे छोड़ो भाई, इस अमृत को ले लो। सोच सकते हैं कि लक्ष्मी की जो सुंदरता है वो कितनी नहीं होगी, जबकि सबके पर सब बड़े बड़े देवता हैं, असुरों के पास में भी जो है अनेक सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं, लेकिन लक्ष्मी की सुंदरता जो है आप सोच सकते हैं कितनी लक्ष्मी की सुंदरता। रुक्मिणी जी जब जो है जो भगवान श्री कृष्ण हरण के लिए आए थे उस समय, तो भगवान को बता दिया था रुक्मिणी जी ने कि ऐसे ऐसे जो है शादी से एक दिन पहले हम जो है देव दुर्गा की पूजा करने जाएंगे, आप वहां आ जाने का, वहीं से हमें उठा लेने का। भगवान ने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब ये हुआ जो है, तो उधर से तो रुक्मिणी जी क्या किए थे, पर्दे में आए और बहुत मतलब एक फोर्स उनकी सुरक्षा के लिए नियुक्त किया गया था, लेकिन जैसे ही पूजा करके जब रुक्मिणी जी बाहर निकली और बाहर निकल करके जब उन्होंने अपना पल्लू थोड़ा सा ऊपर उठाया और जब एक दृष्टि डाली सबके ऊपर, तो जो उनके जो फोर्स थे जो घोड़ों पर हाथियों पर जो क्या नाम पैदल हाथी वाले जो है हाथी पर ही गिर पड़े सेंसलेस होकर के, घोड़े वाले जो है घोड़े से ही नीचे धड़ाम से नहीं गिर पड़े, और जो खड़े उनकी पिस्तौल कब नीचे खुसक गई उनको मालूम ही नहीं चला। अब सोच कितना मतलब उनकी सुंदरता है, जब लेकर के चले गए तब उनको होश आया, अरे भाई हम किसके लिए आए थे, बोला हाँ हाँ रुक्मिणी की सुरक्षा के लिए, बोला कहाँ है तो किसी ने कहा अरे बोल वो तो चली गई है। तो ऐसे हम समझ सकते हैं कि वास्तव में जो उच्च लोकों में और ऊपर ऊपर जाएंगे बैकुंठ आदि में लोग कितने सुंदर हैं, आश्चर्यचकित हो जाएंगे। जब चतुर कुमार जो है बैकुंठ में पहुंचे थे भगवान के जो है दर्शन करने के लिए, जब पहली ड्योड़ी में प्रवेश किए तो वहां जो द्वारपाल थे, जब उन्होंने उन द्वारपालों को देखा तो धड़ाम से नहीं चारों ने दंडवत मार दी, यही नारायण है। उन्होंने कहा भाई है, उनको बिचारों को शर्म लग गई, उन्होंने आंख बंद कर ली, उन्होंने कहा नहीं नहीं महात्मा जी हम नारायण नहीं है, नारायण तो है आगे है आगे जाइए। अरे आप नहीं है, बोला नहीं नहीं हम उनके देव सेवक हैं। फिर आगे गए तो फिर उनको दंडवत मार दिया गेट कीपरों को, द्वारपाल खड़े थे उन्होंने भी शर्म से अपनी गर्दन नीचे की, बोला हम नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि वहां के जैसे जैसे हम जो है ऊपर जाएंगे तो वहां के वासी भी बहुत सुंदर सुंदर है, इतने सुंदर है कल्पनातीत है। आप भगवान ने कहा गीता में अथवा बहुने तेन किम ज्ञातेन तब अर्जुन विष्टव्यम इदम कृष्णम एक अंश निश्चित जगत, हैं, और हम इस संसार के बारे में, संसार का जो ओपुलेंस देख रहे हैं, संसार का जो ऐश्वर्य देख रहे हैं, संसार की जो सुंदरता देख रहे हैं, ज्यादा कुछ हम वर्णन नहीं कर सकते। जो सुंदरता है ना, वो तीनों लोकों में केवल हमारे एक अंश है, स्थित जगत केवल एक अंश की झलक मात्र है, और ज्यादा कुछ नहीं है उसमें। और जिसके ऊपर हम जो है पूरा लट्टू हो गए हैं, लगता है कि इसके बिना जीवन बेकार है। तो इसलिए सिद्धांत क्या है, सिद्धांत यह है कि भाई है, हमें जो है जहां भी जाए प्रचार हेतु जाए, दूसरा पिकनिक हेतु नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि और जहां संतों का समागम है वहां अवश्य ही जाना चाहिए, क्योंकि संतों के समागम से ही जीवात्मा का कल्याण हो सकता है। आज प्रभुपाद जी जो है, प्रभुपाद जी गए विदेश में, वो भी एक कुओं का स्थान था, लेकिन प्रभुपाद जी ने अपनी संगति के द्वारा, अपने कथाओं के द्वारा, अपने जो है भगवत नाम के द्वारा, जो लोग काक स्वरूप थे आज उनको हंस बना दिए, हंस नहीं परमहंस उनको बना दिए। तो इसलिए सिद्धांत यही, हमें जो है उन स्थानों पर जाना चाहिए जहां संत महात्मा रहते हैं, अन्य स्थानों पर जाना चाहिए प्रचार करने के लिए। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहेंगे? हरे कृष्णा, बहुत धड़ाधड़। हाँ माता जी बोलो, दे दो माता।
हरे कृष्णा प्रभु जी।
बोलो, बोलो।
प्रणाम प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, जो आपने हमें यहाँ के लोगों का और उच्च लोगों का वर्णन आपने इतना सुंदर हमें अच्छे तरीके से बताया प्रभु जी। प्रभु जी मेरा प्रश्न है कि आपने बताया कि जैसे जैसे हम उच्च लोगों में जाते हैं तो हमारे सत्व गुण में वृद्धि होती है, लेकिन फिर भी जो वहाँ के जो लोग हैं वो बिल्कुल खाली है प्रभु जी, फिर भी जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं और वहाँ के लोग बिल्कुल खाली है और हम वहाँ पे जाने की चेष्टा करते, तो फिर वहाँ के जो वो खाली क्यों है वो लोग, और वो वहाँ के जो जो भी कोई रहने वाले वो सोचते हैं कि हम इस मृत्यु लोक में आए, तो ये इसका आंसर दीजिए प्रभु जी।
समझ रहे ना प्रश्न, जैसे ऊपर के लोकों में जाते हैं लेकिन वहाँ भी तो दुख ही है, यहाँ दुख है वहाँ भी दुख है, तो फिर वो सत्वगुण का वृद्धि कैसे हुई? नहीं
जी,
तो बात ऐसी है कि वहाँ सत्वगुण है लेकिन व्यक्ति के अंदर तीनों ही गुण हैं। कभी कभी रजोगुण प्रबल हो जाता है तो सत्वगुण तमोगुण दब जाता है, कभी कभी तमोगुण प्रबल हो जाता है तो रजोगुण सत्वगुण दब जाता है, कभी कभी सत्वगुण प्रबल हो जाता है रजोगुण तमोगुण दब जाता है, लेकिन ज्यादातर व्यक्ति वहां के सत्वगुण में रहते हैं। रजोगुण तमोगुण कभी कभी आता है लेकिन ज्यादातर वो किस गुण उसमें रहते हैं, सत्वगुण में रहते हैं। तो वहां जो है जो समस्या है हमारे जैसी नहीं, हर पल पद पर समस्या भरी पड़ी है, ऐसी समस्या नहीं, वहां कभी कभी समस्याएं आती हैं। प्राय वहां जो है ज्यादातर सुख ही जीवन है, वहां जो है कोई बीमारी नहीं, भूख प्यास का बोझ नहीं, सर्दी गर्मी की टेंशन नहीं, बहुत सारी कोई ज्यादा समस्या नहीं है। तो कभी कभी जो है वहां भी जो है समस्या आती है, क्योंकि हमने बताया था कि जो तीनों ही गुण है वो ऊपर के लोकों में भी है लेकिन वहां उनकी मात्रा कम है, और हम हमेशा रजोगुण तमोगुण में रहते हैं, कभी कभी सतोगुण में आते हैं, बाकी रजोगुण तमोगुण में रहते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए जो है वहां भी समस्या तो सब जगह है तीनों लोकों में, लेकिन परमानेंट मतलब हर समय समस्या ही नहीं बनी रहती, कभी कभी आती है, ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न है?
हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम, धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
हरे कृष्णा
प्रभु जी, इसमें जो शबरी का अभी वर्णन आया है, तो शबरी का क्या प्रारब्ध कुछ ऐसा था कि जिसके कारण से उनको इतनी शुद्ध भक्ति प्राप्त हुई और फिर बाद में दर्शन भी भगवान का प्राप्त हुआ?
क्या चीज़?
तो शबरी का कुछ प्रारब्ध में ऐसा कोई संयोग था कि उनको शुद्ध भक्ति जो प्राप्त हुई भक्तों के संग से और फिर बाद में भगवान का दर्शन भी प्राप्त हुआ, तो पीछे कुछ उनका इसका कुछ कारण है क्या?
देखो कारण भी हो सकता है लेकिन विशेष कारण है संतों का आशीर्वाद। कुछ कारण नहीं भी हो लेकिन यदि संत जिसके ऊपर कृपा करना चाहे वो सब कारण फिर वहां आ जाते हैं। दर्शने पवित्र करे यही तुम्हार गुण, गंगारा परस होइले पाश्चात्य पावन, दर्शने पवित्र करे, दर्शने पवित्र करे। या तो साधुओं का जैसे विदेशी लोग थे जो है, इतने सब जो है खाने पीने वाले सब थे, लेकिन प्रभुपाद जी का उनको कृपा मिला, प्रभुपाद जी का उनको आशीर्वाद मिला, तो वो भी जो है महान बन गए। तो विशेष है साधु, बिना साधु संगति के कोई कारण सफल नहीं होता। जो भी संसार में गया है हजारों लाखों दृष्टांतों में देखेंगे 99.9% साधु के आशीर्वाद से गया। ठीक है, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, निताई गौर शीतानाथ प्रेमनंदे।